पाकिस्तान में जो कुछ हालिया दिनों और कई अहदाफ हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इस्तेमाल कोशिश करता है कि एक तीर से कई शिकार करे, और कई शिकार थोड़ा तहम्मुल से, ये मौजू जरा लंबा भी हो सकता है और शायद आखिरी मौजू भी हो आज के दिन का, थोड़ा तहम्मुल से सुनिए। पाकिस्तान की हालात पर बात हो रही है, आपको मालूम है कि ये मुल्क जब से बनाए दो ताकतें हमेशा इस पर, एक फौजी हुकूमत जिसको आप डिक्टेटरशिप कहते रहे या मार्शल लॉ का निफाज कहते रहे, यानी फौज के हाथ में रहा, और अगर फौज के हाथ में ना भी रहा हो तो जो जमहूरी हुकूमतें बनाए, जमहूरी हुकूमतें थी वो इस कदर कमजोर हुकूमतें थी कि बगैर अमरीकी सहारे के, बगैर यूरोप के सहारे के वो खड़ी नहीं होती थी, और उनके लिए हम सब कुछ करते थे। फौजी भी ज्यादा देते थे, जाओ इस मुल्क में जो कारखाना लगाना है, जो मुआहदा कहते हो, जो टेंडर भरना चाहते हो, जिस चीज को तुम कहो बनाना है बना दो, जिस चीज को तुम हमें मना कर दो हम नहीं बनाएंगे। हमारी ये हालत रही है, और यूरोप से भी हम ये कहते हैं, उनको और भी ज्यादा दे देंगे, भाई चलो ना सिर्फ तुम्हें इजाजत देंगे कि तुम आओ हमारे मुल्क में जो चाहे करो, जो चाहे बनाओ, बल्कि हम ये भी करेंगे कि जो हम मुल्क से कमाएंगे वो भी तुम्हारे बैंकों में रखेंगे। और आपको मालूम है सारे हुक्मरान, सारे बिना इस्तिस्ना, कोई एक भी हुक्मरान ऐसा नहीं होगा छोटी सतह का भी, इलाकाई सतह का भी, कि जिसका सरमाया बाहर के बैंकों में ना, यहां वो रखते ही कहते महफूज नहीं, अच्छी मुल्क तुम्हारे नाम में, इस मुल्क के सदर तुम हो, वजीर आजम तुम हो, पार्लियामेंट मेंबर तुम हो, हर चीज तो तुम्हारे हाथ में, लेकिन मुल्क महफूज नहीं। हम इस मुल्क में सरमाए नहीं रहते, सरमाए सारा हमारे इस मुल्क से बाहर है, वहां के महफूज सेफ है, और हमने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर इस मुल्क के जो अब नहीं रहे, और वो कहते हैं जो हमारे हमारे हुक्मरान कहते हैं हमारे, वो हमने दुनिया के मुख्तलिफ खुसूस यूरोपीय ममालिक में रखे हुए। ये एक रवैश है जो 70-80 जब से हम पाकिस्तान बनाए जा रही हो सारी फौज आती है, थोड़ा बहुत काम हो जाता है इस मुल्क में, थोड़ी बहुत सख्ती होती है, कुछ काम हो जाता है, नजर आता है, जमहूरी हुकूमतें आती हैं हालत बहुत बुरी हो जाती है, फिर माहौल ऐसा बनता है कि दोबारा फौज आ जाती है, ये होता रहा मुसलसल, ये साइकिल है, ये सर्कल है जो घूम रहा है। हो अभी भी आपको याद होगा कि इमरान खान के आने से पहले ये बात गर्दिश कर रही थी कि या इमरान खान आ जाए तो भी फौज आ गई, और अगर इमरान खान नहीं आया तो फौज खुद आ जाएगी, ये बातें गर्दिश कर रही थी। इमरान खान का वो पहला धरना याद है आपको, पार्लियामेंट के बाहर सब कह रहे थे क्या मतलब ओपन, नवाज शरीफ भी और जरदारी भी सब कह रहे थे कि ये तो फौज ने करवाया, इसकी क्या मजा है कि ये इस तरह से बैठेगा, फौज चाहती है बैठे, फौज इसके पीछे, फौज चाहती है इसको वजीर आजम बना दे, सारी बातें मशहूर थी। बहरहाल ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी में तब्दीली आ सकती है, या आई भी होगी या आई भी है, कि फौज अब डायरेक्ट नहीं आ रही क्योंकि बदनामी बहुत हो जाती है। फौज किसी मुल्क की अगर जमहूरी मुल्क कहलवाता हो, अगर उसकी फौज एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, फौज उसकी मालिक बन जाए, फौज उसकी हुकूमत ले ले, ये बहुत बदनामी है, दुनिया में बदनामी है, एकदम मुआहदे खत्म हो जाते हैं, इमदाद रुक जाती है, एनजीओ जो है वो घबराना शुरू हो जाती है, वो फिर नई सरमाए लगाती, जो कारखाने पहले से या जो बिजनेस चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, लोग आते हुए डरते हैं क्योंकि फौजी हुकूमत है, इसके मुख्य वहाँ तो अमनियत नहीं है, फौजी हुकूमत है, फौज उसी को कंट्रोल संभालती है, सिविल गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हो जाए, सिविल हुकूमत कुछ ना कर सके, गवर्नमेंट हमेशा फौज के आते हैं। तो एक तो सब दुनिया में यह है कि अगर फौज आई है इसका मतलब है कि अपना मान नहीं, खराब हालात बहुत खराब है, तो खुद बहुत असर पड़ते हैं इकतसाद पे, हालात के ऊपर, अमनियत पर, हर चीज पर असर पड़ना शुरू हो जाता है, बिजनेस पे। हो तो इसलिए शायद स्ट्रेटेजी तब्दील हुई है, और अब उन्होंने खुद नहीं आ रहा है, लेकिन है सब कुछ उन्हीं के हाथ में, है सब कुछ उन्हीं के हाथ में, ये तो एक बात हो गई, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी तरफ है, दूसरी यह है कि जब तक इससे पहले की हुकूमतें रही हैं, हालात पाकिस्तान के बड़े खराब रहे हैं, जिस एतबार से भी देखें, इकतसादी एतबार से देखें, तवानाई के एतबार से देखें, फिरकावानाइत के एतबार से देखें, दुनिया से रवाबित के एतबार से देखें, हालात खराब ही रहे मुसलसल, कभी भी अच्छे नहीं हुए, गरीब गरीब से गरीबतर हो रहा है अंदर मुल्क में, अमीर अमीर से अमीरतर हो रहा है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। ये दो तबकाती निज़ाम वजूद में आ रहा है, दो तबकाती निज़ाम वजूद में आ रहा है, जो कैपिटलिज्म का खासा है। यानी कैपिटलिज्म किसी मुल्क में जाएगा, अगर आपको चेक करना हो कि इस मुल्क में कैपिटलिज्म है या नहीं है, तो यही देख लें कि आया ये जो तबकाती फ़र्क है ये बहुत ज़्यादा है या नहीं। क्योंकि सोशलिज्म उसका उलट था, बकौल नारों के अतबार से उलट था, कि जहाँ पर मिडिल लोग ज़्यादा वजूद में आते हैं, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, मिडिल तबका मिडिल क्लास बहुत तेजी से बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ती है, तो कहते हैं यहाँ पर सोशलिज्म है। ये नारा था उनका, भाई कैसी कोई बात नहीं है, उनका भी नतीजा यही निकलता है। कैपिटलिज्म का सोशलिज्म का नतीजा एक ही होता है, अमीर अमीर से अमीरतर होता है, अमीर अमीर से अमीरतर हो जाता है, गरीब गरीब से गरीबतर हो जाता है, दोनों का एंड नतीजा यही निकलता है। इस मुल्क में तेजी तबकाती निज़ाम भाई बड़ा, दुनिया जो है वो पाकिस्तान जो है वो दो ग्रोहों तकसीम हो रहा है, अमीर से अमीरतर हो रहा है, उसको समझ में नहीं आता कहाँ खर्च करे, समझ में नहीं आता कहाँ खर्च करे, चलो और गाड़ी ले लेते हैं, चलो एक घर और बना लेते हैं, चलो आज फला जगह घूमने चलते हैं, उससे कितना खर्च करते हैं। गरीब आदमी है वो बेचारा मुसलसल इस चक्कर में कि किस तरह से आज तो गुजार लिया, अब कल क्या होगा, कल कैसे खाऊंगा, कल कहाँ से कमाऊंगा, कल क्या करूँगा, गरीब आदमी मुसलसल बेचारा। कहीं इक्तसादी अमनीत ना हो, मईशत अमनीत ना हो, करप्शन करप्शन करते हैं, रिश्वतें आम होती हैं, हर तरह का फ्रॉड शुरू हो जाता है, एतमाद ख़त्म हो जाता है, पता नहीं क्या कुछ होता है। गुरबत गुरबत, आइमा ने कहा कि एक दरवाजे दाखिल होती है और ईमान दूसरे दरवाजे से निकल जाता है, बड़ी अहम बात है। आदमी फारिग हो जाता है, गुरबत हो जाता है, फारिग हो जाता है। आप कोई भी बात करें वो कहते हैं छोड़ दिया, पैसा बताओ कैसे कमाना है। और ये ऐसा ऐसा छोटे उस तबके में भी इसको गरीब रखा जाता है ना, उसके अंदर बड़ी फिक्र आ जाती है, तो वो कतल भी करवाते हैं आप उसको, आप उसको इजारे का कातिल बना सकते हैं, आप उसको जो चाहे कर रहे हैं। तो कहता भाई मैं तो घर चलाना है, बताओ क्या करना है। ये सिलसिला है, बड़ी खतरनाक सियासत है, और इस तबके को इन्वॉल्व कर देते हैं, और फिर हर बुरे काम में वो भी जाता है और आपका भी देते हैं। पाकिस्तान 70 साल से कुछ इस तरह की सियासत का शिकार है। हुक्मरान चाहिए बड़ा मुखलस, एक बड़ा बाइख्तियार, दो निडर जरूरतमंद, तीन रवाबित के अखबार से बहुत मजबूत, चार आवाम में बहुत मकबूल, पांच यानी चार पांच छह सात आठ खसूसियात ऐसी चाहिए, ऐसा हुक्मरान चाहिए उनको। क्योंकि हमें 70 साल 80 साल मुसीबतों से निकाल सके। लोगों को नजर आया कि इमरान खान में इस तरह की कोई उमंग है, नजर आया, चाहे उसको ना पहचानते हो इमरान खान को, लेकिन जो साबिका हुक्मरान जो हमारे साथ कर चुके थे उनसे निजात पाने के लिए ही कम से कम समझ में आया। नहीं कहता मैं कि नहीं इमरान खान को लोगों ने पहचान लिया था, ये सब बड़ी खुश हो सारी सलाहियत है, ठीक है नारे वही लगा रहा था, तो सारे हुक्मरान वही नारे लगाते हैं। इमरान जरा जब ये नारे लगा रहे हैं जो मैं कह रहा था हुक्मरान को चाहिए होते हैं, तो उस वक्त हमें ज्यादा इसलिए बेहतर लग रहा था कि हमारे पास जो तजुर्बे थे उस एतबार से ये सही था कि जो थर्ड ऑप्शन अवलब आता है कि सपोर्ट आर्मी की भी रही होगी, लेकिन हम ये कहें कि आवामी मकबूलियत थी, ये भी गलत है। आवामी मकबूलियत तो थी या नहीं थी भाई, आवामी मकबूलियत भी थी, और उधर सही है कि पीछे सपोर्ट भी होगी, और वो आ गए। आने के बाद जो उनके नारे थे, नवा महीना गुजरा है भाई, अभी 9 महीने गुजरे हैं, जो उनके नारे थे, नारे तो बड़े जबरदस्त लगाए थे, लेकिन भाई हैं इन नारे लगाने के लिए, या दूसरे लफ्जों में नारों को अमली जामा पहनाने के लिए, नारों को अमली जामा पहनाने के लिए आपको पूरे पूरे इख्तियार चाहिए, आपको पूरे पूरे वसायल चाहिए। अब पता चला कि ना इख्तियार थे ना वसायल, ना इख्तियार थे ना, आते के साथ ही चाह रहे हैं कि ईरान का दौरा करें। हमने नहीं कहा था, खुद ही उनके दिमाग में था, वजीर आजम बनते ही पहला दौरा करेंगे ईरान के, ये उनकी अपनी सोच थी, हम ईरान जाएंगे। पीछे से मना हो गया, उन्होंने कोई ईरान नहीं जाता भाई, हम पहली मरतबा जो भी वजीर आजम बनता है हमारा वो जाता है सऊदी अरब, चलो सऊदी अरब चलो, कोई इख्तियार नहीं। क्या मतलब वजीर आजम में इख्तियार होना चाहिए,
हेलन आप पाकिस्तान को जानते ही नहीं है। वजीर आजम कहता ना कि यार ये मिसिंग पर्सन हैं, ये गलत सियासत है, दुनिया के अंदर बदनाम हो रहे हैं, दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। इस मुल्क को अमन अमन मुल्क नहीं कहा जाएगा, इसे सिविलाइज्ड मुल्क नहीं कहा जाएगा। सिविलाइज्ड मुल्क होना यानी अफरातफरी है, यानी अमनियत नहीं है, यानी कोई भी महफूज नहीं है, यानी जिस वक्त चाहेंगे इसको उठा लेंगे। गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है, मुल्क को चौड़ लोग चला रहे हैं। अब ये वो बातें हैं कि जो ओपन है उनके सामने कि बाबा सियासत खत्म करो। वजीर आजम क्या, सदर साहब क्या, पार्लियामेंट क्या, सब लोग भी चीखते रहे कानून बनाओ खत्म होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां जिनके पास इख्तियार हैं वो कहते हैं कि हम बनाते रहो जो कानून बनाने, हमने तो वो करना है जो हमारी समझ में आया, और उसको कह देते हैं वो ये मुल्क की अमनियत का मसला है। एक बहुत बड़ा सा नारा लगा देते हैं, मुल्क की अमनियत से ताल्लुक है, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जमीनी अमनियत का मसला है, मुल्क की सालमियत का मसला है। चार पांच बड़े बड़े खूबसूरत जुमले जो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हर चीज जायज हो जाती है, हर चीज जायज हो जाती है। दो बात हो गई। तीसरी बात, अब इस मुल्क में एक कश्मकश दाखिली हो रही है, चली रही है, इससे पहले तशरीयों के साथ जो कुछ हुआ, इस मौजूदा सैनियो से पहले जाइए, जो कुछ तशरीयों के साथ हुआ वो ये था कि इन्होंने एहसास किया कि भाई हमें अगर इस मुल्क में इज्जत के साथ रहना है तो हमारे हाथ में ही सारे इख्तियार होने चाहिए, हम डिपेंड नहीं कर सकते इस मुल्क की पुलिस पे, हम डिपेंड नहीं कर सकते इस मुल्क की एजेंसियों पे, हम डिपेंड नहीं कर सकते इस मुल्क की हुकूमत पे, शियों को मजबूत होना होगा, शिया खुद मजबूत हो, हर चीज अपने हाथ में ले। ये वो पुरानी जहनीत का नतीजा है जो हमारे साथ हुआ है। कोई शहर बड़ा छोटा, कोई कस्बा, कोई इलाका ऐसा नहीं था कि जहां पर शिया शहीद ना हो रहा हो, यानी खतरा ये था ना कि अगर तुम इतनी आसानी से घरों में घुस के शहीद कर रहे हो तो उसके मतलब कल तुम नामूस पर हाथ डालोगे। आप तो ये देख रहे थे ना कि परसों क्या होने वाला है, आज ये हो रहा है, कल ये होगा, परसों ये हो सकता है, तुम ऐसा ऐसा सबको साइड कर दोगे, शिया गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, शिया आर्मी में नहीं जाएगा, शिया बिजनेस नहीं बना सकता। देखिए ये सारी बातें इस मुल्क में हुई हैं गुज़श्ता हुकूमतों में, ये सारी बातें इस मुल्क में हुई हैं, या कम से कम इस तरह से चल रहे थे। हम अकलियत शराब देखें, उनके ओपन खिताबात हैं, हम अकलियत करार दे देंगे, हम तुमसे जिजिया फदिया छोड़ेंगे, तुमको तुम कनीजे बनाएंगे। ये सारी बातें इस पाकिस्तान के मस्जिदों में हुई हैं, इस पाकिस्तान की रोडों पर हुई हैं, और वो तकरीर मौजूद है जिनको आज न्यूट्रल करके गवर्नमेंट में शामिल करने की बातें हो रही हैं, तो उनको न्यूट्रल कर दिया गया, उनको भी कह दिया गया भाई फलावारियत नहीं होगी, कब्जाम नहीं होगा, फला नहीं होगा, अब खामोशी से हुकूमत में सियासत में जो कुछ करना है पार्लियामेंट में आगे करो, ठीक है आज आपने सियासत अपनाई है, लेकिन इससे पहले तशय्यों ने अपने आप को अमनियत में महसूस नहीं किया था, खतरे में महसूस करते थे, खतरे महसूस करते थे जो उनकी समझ में आती थी करते थे, जहां से ट्रेनिंग मिल रही है ले रहे, जहां से असलहा मिल रहा है ले रहे, खुद अपने आप को मुनज्जम कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन शिया यू नहीं है कि हम कहेंगे कोई एक पार्टी, कोई एक शख्सियत आवाज साजिद नकवी साहब ने किया था, नहीं, जवाब नकवी साहब इस तरह करवा रहे हैं नहीं, या राजा साहब इस तरह सोचते हैं नहीं, यूं नहीं हुआ, बल्कि हर शिया पाराचरा में जो शिव की समझ में आया उन्होंने किया, गली बख्त साहब ने शिव की समझ में उन्होंने, कराची की शिव की समझ में, यानी जिसकी जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था। आप ही कहेंगे नहीं सारा प्री प्लान हो रहा था, एक एक कौम एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन एक शख्सियत शामिल है, एक मुल्क से उन्होंने मुआहदा कर लिया, उस मुल्क के अंदर लोग जा रहे हैं और ट्रेंड हो रहे हैं, फल हो रहा है, ये गलत बात है, कहीं ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने जब अमनियत अपनी महसूस की कि खतरे में है तो हर चीज को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। ये सारा गुज़श्ता सियासतों का नतीजा है। आप भी तो कहते हैं ना कि गुज़श्ता सियासत गलत थी, हम थोड़ी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जो गुज़श्ता सियासत हमने की है वो गलत है। देखिए ये आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है और उसके अलावा भी ये बातें हो गई हैं कि हमने जो गुज़श्ता सियासत, क्या मतलब कहते हैं प्रॉक्सी वॉर होते रहे, हम इस मुल्क में प्रॉक्सी वॉर होते रहे, जंग हमारी नहीं थी, हमने अमेरिका की और रशिया की जंग में अफगानिस्तान में पाकिस्तान को बुरी तरह से इस्तेमाल होने दिया। ये जुमले आपके हैं, हमारे नहीं, ये हमें दूर करके गया है। ये अभी जैद हमें टेलीविजन के ऊपर कहता है, ये आर्मी चीफ ने उलमा की महफिल में कहा है, कि हमसे ये गलत हुआ है, तो जो हमसे गलत हुआ है तो भाई जो उसका रिएक्शन आया है आप उसके पीछे क्यों पड़ गए? तो रिएक्शन था ना सारा। अभी ज़ैनबियों को हटाएं, अभी हम दिफाए मुकद्दस और हरम के दिफा की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फरकावारी की बुनियाद पर जिन लोगों के साथ मुश्किल जो इस वक्त उठे हुए हैं या उठाने की कोशिशें की जा रही हैं, कि वो जो गंदी सियासत पिछले हुक्मरानों ने रखी थी जिसका ये नतीजा निकला था, जब उसके रिएक्शन में इस तशरीयों ने अगर असलाह उठाया है रिएक्शन में उठाया, वरना ये असलाह उठाने वाली कौम नहीं थी, ये बेचारी तो जंजीरें और अलम उठा के रखती अपने हाथों में। इतने ही सोचते थे ना आप लोग, इससे ज्यादा सोचते थे? इससे ज्यादा नहीं सोचते थे, इतने ही सोचते थे जुलूस निकल जाए, आजादारी खैरियत से गुजर जाए, मजलिस हमारी हो जाए, आप यही सोचा करते थे। आपने कब सोचा कि आलिमुद्दीन है, एक खतीब है, एक जाकिर है, उसके साथ एक गाड़ी है, दो गाड़ियां, उसमें बाकायदा उसके मुहाफिज बैठे हुए हैं जो सब असलहे वाले मुहाफिज होंगे, कहां सोचा था आपने? कहां होता था पाकिस्तान में ऐसा हो? उस गंदी सियासत की बुनियाद पे कि जो स्टेट की गवर्नमेंट और स्टेट की सियासत थी और जिसको आपने कह दिया कि गलत थी, उस बुनियाद पर जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ है, अब आपको ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि अगर गलतियां आपसे हुई हैं तो हो सकता है कि इस कौम से भी गलतियां हुई हैं, अपनी हिफाजत के लिए खुद हथियार उठाए, ठीक है, अगर आपसे हुई है तो उनसे भी हुई, इसको बराबर कर देना चाहिए, इसको बराबर कर देना चाहिए। अब आए अगले मौजू की तरफ, अगला मौजू उनका दिफा मुकद्दस बन गया, इसे हम हरम का दिफा कहते हैं और इसको मुकद्दस दिफा कहते हैं, और शहनशाह भाई की बात की हमने तारीफ की है, शहनशाह नकवी साहब ने जो बात धरने में खड़ी होकर कही और इंशाल्लाह आपने अक्सर ये तो सुन ली, उन्होंने कहा हमसे सवाल करते हैं कि आप क्यों गए हरम का दिफा करने के लिए, उन्होंने कहा हम तो ये सवाल आपसे करते हैं कि आप क्यों नहीं गए, हम फौज से पूछते हैं वो क्यों नहीं गई, हम गवर्नमेंट से पूछते हैं उसने क्यों नहीं इकदाम किया, कौन है भाई इनाम ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा, कौन है? उन्हीं नबी की नवासी नहीं है कि जिनके लिए आप जो है वो अपनी पूरी फौज लगाने के लिए तैयार है कि कहीं मदीने पर हमला ना हो जाए, कहीं मक्के पर हमला ना हो जाए, तो उन्हीं मुकद्दस लोगों की जिनकी आप बात करते हैं बाबा, ये उन्हीं की नवासी है, आपको बात करनी चाहिए थी इसके दिफा की, आपको बात करनी चाहिए थी, आपको खुद यहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए थे, आपको बाकायदा शाम के मुल्क से मुआहदा करना चाहिए था कि हम आएंगे, किससे लड़ने जा रहे हैं? दाइश से, वो दाइश की जो आपके लिए भी खतरा है, अफगानिस्तान के लिए भी खतरा है, वो पूरी इस्लामी दुनिया के लिए खतरा है, आप कहते हैं हम बड़े कहते हैं, उसने उड़ाए हैं आपके फौजी, उसने आपके स्कूलों पर हमला किया है, उसने आपके लोगों पर हमला किया है, उसने आपके जनरल कर्नल ब्रिगेडियर्स मारे, शियों ने मारे, शियों ने इस मुल्क में एक भी आदमी, एक भी ऐसा आदमी कि जो हुकूमत से वाबस्ता हो, स्टेट से वाबस्ता हो, इदारों से वाबस्ता हो, उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाया। इनकी समझ में यह बात आई कि भाई हमारा मुखालिफ है, या अगर हम नहीं मानेंगे हमें मार डालेगा, क्यों? क्योंकि तुमसे उम्मीद ही खत्म हो गई थी, हुकूमतों से उम्मीद खत्म हो गई थी, बंदा पकड़ पकड़ के तुम छोड़ दिया करते हो, तुम्हारी अदालत ने छोड़ दिया बंदे पकड़ के, साबित छोड़ा है मैंने ये सब क्या किया है, कह रहा है कि मैंने त्रिशिया मारे, हमने छोड़ दिया उसको, यह सियासत तुम्हारी। और दिफा मुकद्दस जहां पर अगर हुकूमत इकदाम नहीं करेगी तो ये अवाम का इकदाम था जिन्होंने खुद किया है, ये भी गलत है कि इसको किसी ने किया है, इनके सहूलतकार हैं और इनके पीछे ऑर्गेनाइजेशन है और इनके पीछे जो है शख्सियात हैं और फलाएं, कुछ नहीं है, ये लोगों का अपना है भाई, लोगों का अपना है, खुद हर आदमी अपने तौर पर गया है, कोई नहीं सुन रहा था यहां पर किसी बड़े की, कोई किसी को अपना बड़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई इसको महदूद करें, इसको फला करें, इसको सिस्टमेटिक करें, गवर्नमेंट से इजाजत लेके करें, कोई नहीं था, सब कहते थे कि भाई यहां कुछ नहीं होगा, वहां धर्म गिर जाएगा, जब तक ये सारे मराहल तय करोगे वहां दुश्मन धर्म पहुंच चुका है। नारा लगाया था आपने कुल्लू ना अब्बास सा किया ज़ैना, बहुत बड़े होना, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा नाम है, हम सब आपके अब्बास हैं ज़ैना, यानी ठीक है हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन अगर हम उस वक्त नहीं थे तो हम इस वक्त भी नहीं, ये इस वजह से हुआ। मैंने कहा कि हमारा जो मसला है ना वो ये है कि हम कभी भी जड़ से नहीं पकड़ते, हमारी हुकूमतों का हमारी एजेंसियों का मसला है ना, कभी जड़ से नहीं रोकते, बाबा फसाद को रोको जहां फूटा है, वो देखो कि वहां फसाद शुरू कहां से हुआ है, तुम्हें बात करनी चाहिए सऊदी हुकूमत से कि क्यों दाइश को सपोर्ट करते हो, तुम्हें बात करनी चाहिए तुर्की गवर्नमेंट से कि क्यों खबीसों को पालते हो, नजस लोगों को पालते हो, इन्होंने पाला है ये तुर्की, ये सऊदी अरबिया इन्होंने पाला है, हम तो इस्लामी मुल्क की बात कर रहे हैं ना, इसराइल की बात नहीं करते, चलो तुम्हारा रास्ता ही नहीं इसराइल से, तुम कहो कि इसराइल की, असल में इसराइल की डमी फौज है, समझना चाहिए इस बात को, ये इसराइल के डमी फौज है, ये इसराइल ने फौज तैयार की है, इनके सबके इलाज इसराइल में होते रहे। ये बातें आप बड़ी सोशल मीडिया पर ओपन है, छुपी भी नहीं थी। वो यहूदी है जिसको अबू बकर बगदादी कहते हैं, वो एक यहूदी है, तुम्हारा यहूदी है जिसको ट्रेंड किया गया, अरबी सिखाई गई है, जिसको लीडरशिप दी गई है, जिसको फिर महफूज कर लिया गया, फिर दोबारा ला रहे हैं उसको, कभी नहीं मारेंगे उसको। हाँ मार देंगे जब उससे अच्छा कोई यहूदी लीडरशिप पैदा हो जाएगा, जो इस्लामी इस ताकतवर यानी जो भी दाइश है जो भी इस तरह के उठेंगे उनसे ज्यादा मजबूत ताकतवर होगा उसको ऊपर लाएंगे, इसको मार डालेंगे, खुद ही मार डालेंगे, आप नहीं मारेंगे, खुद ही ड्रोन हमला होगा अमरीका का, चला गया वहां से जानू होगा और आप खुश रहेंगे, अब कोई बब्बा नहीं जानू होगा, बाबा उससे बड़ा कोई अबू बकर बगदादी जाएगा तो उमर बगदादी आ जाएगा, यानी कोई बड़ी शख्सियत आएगी ना, छोटी तो नहीं आएगी। बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने हमेशा इसको इजी और हल्का लिया और बाद में अपने ही लोगों को परेशान करते हैं, अपने मुल्क की अमनियत खराब करते हैं। अब आज इमरान खान सर बड़ी तो थी कि कम से कम आपने नारे लगाए थे कि आप ये मिसिंग पर्सन वाला होने ही नहीं देंगे, आप इसी तरह से जो भी इस मुल्क के हालात में फरकवालियत थी फना थी इसको बेहतर करेंगे, मुल्क की मीशत को बेहतर करेंगे, भरे बोर्डों को बेहतर करेंगे, जो भी आप नारे थे। लेकिन अब पता चल रहा है कि आपके पास इख्तियार ही नहीं, आपके पास इख्तियार ही नहीं। आप खुद अगर शख्सी तौर पर देखें तो चाहते हैं बेहतरी होना, क्यों? क्योंकि हमने देखा ईरान के दौरे में आपने अपने सफर का आगाज मशहद से किया, इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हरम से किया और अंजाम इमाम खुमैनी के हरम पे किया। बड़ा वाजे आपने पैगाम दिया है, अच्छी बात है आपने दिया है, लेकिन बात यह है कि आपके पास इख्तियार नहीं। आपको तो अभी बहुत जंग लड़नी पड़ेगी इन इख्तियार के लिए, बहुत जंग लड़ने, बहुत अच्छा जंग लड़नी पड़ेगी। आपको ये चार साल तो लगता है कि सिर्फ समझने में लग जाएंगे कि भाई असल में है कौन, चलाता कौन है इस मुल्क को, इख्तियार किसके पास है, सिस्टम किसके पास है। तो वो जो बात आखिरी थी कि इस वक्त बाकायदा ईरान के नाम आना शुरू हो गए, मीडिया पर जो है वो तेहरान में ट्रेनिंग हुई है और फल जगह पर ट्रेनिंग हुई है और इस तरह से लोग पकड़े गए, फल ये अच्छी सियासत नहीं, ये सियासत अच्छी नहीं। फर्ज कर लेते अगर ऐसा है भी भाई कि ये बहुत मुश्किल काम है कि ऐसा हो, इतने बेवकूफ़ हैं ईरानी के इस तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं पाकिस्तानी और इस तरह से सारे लड़के जो फिर कवारीत में और पकड़े जा रहे हैं और ईरान का नाम भी ले रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो मीडिया ट्रायल है ना, या ये तो अभी अदालतों में नहीं पहुंचेंगे, तो पुलिस का ट्रायल है, अभी तो अदालतों में आए ना, अदालतों में बयाना साबित होना चाहिए। पता है आपके मुल्क के अंदर मीडिया के ऊपर आ जाना कोई नहीं, कल मुकर जाते हैं आदमी, मुकर के जाता है, खत्म हो जाता है, तय हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, अदालतों के अंदर साबित ही नहीं हो पाता, जो कुछ मीडिया में बहुत कुछ आ चुका होता है, पुलिस बहुत कुछ लिख चुकी होती है, लेकिन जब बात पहुंचती है अदालत तक तो वहां कुछ और हो जाता है। जब तक ये अदालतों से हमारी अदालतों से साबित ना हो जाए इस तरह से इसको मीडिया करना भी ठीक नहीं था, आपने तो मुजरिम बना दिया जबकि अभी मुल्जिम है, इल्जाम लगा है। जब मुजरिम हो जाते हैं कि जो साबित हो जाता है फिर इन बातों को मीडिया बनाया जाता है, ये मुसीबत गलत पाकिस्तान की सियासत की जो उस वक्त से लेकर आज तक जारी हो जाने सारे। बार इससे पहले इतने लोग मारे गए, इतने लोग पकड़े गए, आपने तो कभी किसी के पीछे नहीं खोला कि इसके पीछे भी कोई पड़ोसी मुल्क था या आपका कोई दोस्त मुल्क था, पैसे वहां से आए थे, आप खाली मदरसों तक पहुंचा देते थे, मदरसों के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, आप क्यों बताते मदरसों को पैसे कौन दे रहा है, पीछे कौन चला रहा है, कभी आपने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, ये क्या सियासत हो रही है। बस इसका मतलब है कि अभी भी IMF और सऊदी रियाल में जकड़ा हुआ मुल्क कि अगर उनको एड नहीं मिले यानी पाकिस्तान को उनकी तरफ से एड नहीं मिली तो हमने इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ा, और वो मजबूर है क्योंकि ईरान के खिलाफ एक माहौल आलमी सतह पर ट्रंप बना रहे हैं, तो इस प्रॉक्सी वॉर का हम फिर हिस्सा बने, एतराफ करने के बाद हम एतराफ कर चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर में हम शामिल हुए, हमने गलती की है, आज हम फिर दोबारा उसी का हिस्सा बन रहे हैं, आज ट्रंप और सऊदी अरबिया हमसे करवा रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ आपसे करवा रहा है और आप आसानी से फिर भी हरकतें कर रहे हैं, और आप चाहते हैं ये कौम जो कि 4 करोड़ 5 करोड़ के करीब है ये फिर आपका साथ दे, ये फिर इस मुल्क की तामीर में हिस्सा भी ले, फिर ये स्पॉट को अच्छा भी समझे, फिर ये हुकूमत को बनाने में हमें रोल भी प्ले करे। इस तरह से अमेरिका की खुशनुदी के लिए, सऊदी की खुशनुदी के लिए आप अपने मुल्क के लोग रहने वालों के लिए रहने वालों के खिलाफ इस तरह इकदाम करें और फिर आपको अच्छे तवक्कात भी रखें। बहरहाल ये गलत पॉलिसीज हैं कि जिनको हमें मासी में भुगतना है, लग ही रहा है कि हाल और इस्तकबाल में भी भुगतना है अगर यही रविश जारी रही कि जो उन्होंने अपनाई है। ईरान बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है आप लोगों के लिए, पता है कि सरजमीन और बराबर यानी आप पड़ोसी हैं, 900 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी बॉर्डर है, और आप बार बार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महफूज बॉर्डर हमारे लिए यही है, हमें कोई इम्कान कभी भी नहीं कि ईरान की तरफ से कोई हम पर हमला करेगा। ईरान कह चुका है आपको कि अगर कलभूषण का मसला हो या और किसी इशू पर आप ये कहेंगे क्यों इंडिया को फलां जगह दी गई, फलां चीज़ दी गई, तो उन्होंने वाजे तौर पर कहा कि भाई ये हमारा इस्तेसाली मुआहदा है, और अगर वो हम उससे कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अपनी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, जैसे कि हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे दुश्मन के करीब हैं, अमरीका और सऊदीया, पूरा मुल्क आपका सऊदीया की गोद में बैठा हुआ है, लेकिन हमने कभी तवक्को पाकिस्तान से नहीं की कि आप अपना मुल्क यानी सऊदीया के हवाले करेंगे कि वो हमारे खिलाफ कोई काम करें, जैसे कि हमें आपसे उम्मीद नहीं है कि आप हमारे दुश्मन को अपने मुल्क में बैठाने के बाद उससे हमारे मुल्क को इकदाम नहीं करेंगे। इस तरह हमसे भी तवक्को रखें कि हम भी अपने मुल्क की इजाजत सरजमीन किसी तरह कि आपके खिलाफ कोई भी मुल्क इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, इंडिया क्या चीज़ है, कोई भी मुल्क इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस पर यकीन करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबका तजुर्बा 70-80 साल का आपको है, और हुसैन इनकलाब की बात का और ज्यादा है कि कितनी मरतबा, कितनी ही मरतबा इस पाकिस्तान के बलोचिस्तान में ईरानी बलोचिस्तानों को, ईरानी बलोचियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, इसराइल दे रहा है, इंडिया दे रहा है, पता है आपको इंडिया दे रहा है। ये ज्यादातर बलोची इंडिया के हाथ में, वो लोग के जो ईरान के बलोची और जो पाकिस्तान के बलोची और इंडिया के हाथ में, और जो ईरानी बलोची है वो इसराइल के हाथ में, और बाकायदा ही बलोचिस्तान के इलाके जो बॉर्डर बलोचिस्तान और अफगानिस्तान का है खुसूसन, उसके इलाके बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है ये बात, यही वो जिंदु शैतान जैसे वो जिंदुल आदल और जिंदुल्ला कहते हैं, जेशु आदल और फलाना, ये सब वहाँ पर पनप रही हैं, और वो आपके लिए भी खतरा है, और बाकायदा प्लान करती हैं। वही एक ग्रुप जाता है जाके ईरान के अंदर सिपाही पासदारान पर हमला करता है, और वही ग्रुप आता है और आने के बाद आपके मुल्क के फौजियों को उतार देता है, क्रांति कार्ड चेक करके उनको मार देता है। आपकी समझ में बात नहीं आ रही कि ये सब एक ही है? आप इसको ईरान पर इल्जाम लगाते हैं सिर्फ वक्ती तौर पर राजी करने के लिए, इन ताजा खुदाओं को, जमीनी खुदाओं को राजी करने के लिए इस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन जाते हैं, अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी आवाम के खिलाफ, अपनी अमनियत के खिलाफ, सिर्फ चंद पैसों के लिए, और खुसूसन इमरान खान की हुकूमत को कमजोर करने के लिए। अभी तक मैं इस नजरिए पर हूं कि ये इमरान खान की फिक्र या सोच नहीं है, ये वो इस तरह से नहीं चाहता, अगर चाहता होता कभी भी सफर इस तरह से ना करता हो, इस तरह से आगे बातें ना करता हो, नहीं, लेकिन उसको कमजोर करना है, नहीं चलने देंगे। और उसमें जरदारी एलिमेंट, नवाज शरीफ एलिमेंट बाकायदा शामिल है कि जिसकी लॉबिंग है, लॉबिंग है बाकायदा, अमरीका पार्लियामेंट के अंदर लॉबिंग है, या खुद सऊदी में लॉबिंग है उसकी, वो करवाता है ये काम कि आप यूं करवाएं, यूं करें। खुद मैंने कहा कि एक तीर से कई शिकार करते हैं, हमारी कौम को मजबूत नहीं होने देंगे, कमजोर कर रहे हैं, बल्क का साथ कमजोर कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट कभी नहीं होंगे, हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, हमारे पड़ोसी से हमारी जंग करवा दी है, सब पड़ोसी को हमारे मुखालिफ बना रहे हैं, यानी इन सब में ये सब लोग शामिल हैं जिनको इस मुल्क से, इस कौम से, इसकी सरहदों से, इसके दोस्तों दुश्मन से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने मतालब निकालते हैं, बस अपनी मुश्किल को हल करते हैं, और हम खामा खा उनकी मुश्किल को हल करके अपने लिए मुश्किल खड़ी करके। बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है कि सारी बातें हो गई, दो भी बच गया है, अगर कोई बात रह गई है तो फिर इंशाल्लाह किसी वक्त गुफ्तगू हो जाएगी। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।